أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دور قرآن 2023 اس میں سے آج ہم کنٹینیو کریں گے پارا نمبر 13 کو. الحمدللہ ہم قرآن پاک کے اس ہائپ پہ پہنچے ہوئے ہیں جو کسی بھی چیز کی ٹاپ ہوتی ہے. کبھی بھی کسی پہاڑی علاقے میں گئے ہوں تو آپ اس مثال کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ چڑھائی پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں, لائیے کوئی امیجینیشن میں مریض, سوار, کلاب, ایشو, کوئی بھی جگہ سوچئے, اور کوئی نہیں ہے تو کراچی میں بھی تو ایک چھوٹا سا ہل پارک ہے نا. اچھا, اب آپ جب ہل پارک پہ جائیں گے تو یوں جاتے ہیں نا, یوں سانس پھولتا ہے نا, اور اسپیشلی اگر عادت بھی نہ ہو, اور معاف کیجئے گا ہمارے کلچر میں بالکل واک کی عادت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے, سانس پھولتا ہے, وقت گزر رہا ہے جلدی جلدی. جہاں ٹاپ پہ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, تھوڑی سٹیبلٹی آتی ہے, وہ تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے, چلو ہموار ہو گیا سانس, اور پھر جب واپس جانا ہے نا تو لڑکتا ہے. ہم اس وقت قرآن کے یہ 13 پارے کر کر کے نا یہاں آ چکے ہیں. اب یہ 13, 14, 15 یعنی وہ جیسے کمر کے بیچ میں اب کہہ لے کہ بدر, صرف 14th کے چاند کو نہیں کہتے, 13th اور ادھر سے 15th کو بھی کہتے ہیں, جیسے یوم 20 13, 14, 15 کے جو ہم روزے رکھتے ہیں نا اس کی طرف دیکھیے اشارہ. تو یہ جو پارے ہیں نا اس وقت جس پہ واقعی ہمارا بہت وقت بھی لگ رہا ہے, یہ ہے اصل میں وہ ہائپ, چوٹی, ذروہ, سنام, کئی نام ہے. قرآن کے اس حصے تک پہنچتے وقت آپ لوگ اپنی منزل چوز کر چکے ہیں, پکی بات ہے. ابھی آپ کو نہیں پتا لیکن ہوگا. اب اس کے بعد جو ہم نے اسے نیچے جانا نا, پتہ بھی نہیں چلنا. آپ کو ان 15 دنوں کا پتہ لگا تو اگلے تو ایسے پھسلیں گے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کرنا کہہ کے خود کو تھام کے رکھیے اور دعا کیجئے کہ اللہ یہ سال کے بہترین دن اور یہ بہترین قرآن تیرے نبی پہ جو اترا, مجھے اس کو پڑھنے کے بعد اسکیٹرڈ نہیں کرنا, لاس نہیں کرنا. آپ دیکھیے کہ پورا نیویگیٹر آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ پھر بھٹک جائیں, پھر تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ وہی بھٹکے گا جس کا ارادہ ہے بھٹکنے کا. قرآن جن لوگوں کے ہاتھ میں ایک نیویگیٹر کے صورت میں, اگر اس کو پڑھ کے بھی مجھے آپ کو ہدایت نہ ملی تو کیا بنے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت وہ دے کہ جس کی ہمیں واقعی ضرورت ہے. لیکن بات پتہ کہ ہمیں ڈر بڑا ویسے لگتا ہے, گاڈ گیو می گائیڈنس بٹ ناٹ سون, اللہ مجھے ہدایت تو دے لیکن ابھی نہ دینا. تو یہ رویہ نہیں کرنا ہم نے اختیار. ہم نے کون سا رویہ اختیار کرنا ہے کہ جس کے بعد ہماری ہدایت واقعی ایسی خوبصورت ہدایت بن جائے جو ہمارے دل کی پکار اور ہمارے زبان کی پکار ہو. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس حصے میں سورۃ ابراہیم اور اس سے آن ورڈ آگے چل کر دیکھیں گے کچھ چیزوں کے. سورۃ رعد کو کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 19 سے, رکوع نمبر 9 ہے, آیت 19-26. ٹاپک ہے اہل حق, یعنی جو لوگ نفع مند ہوتے ہیں نا, جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں, ان کی صفات کیا ہیں, اور منکرین حق کا انجام کیا ہوگا. افم یعلم انما انزل الیک, ایک سوال سے بات شروع ہو رہی ہے. کیا وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہے کہ آپ کی طرف, آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے, اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوں. کیا آپ اور میں اس وقت تک اس بات کے گواہ نہیں بن گئے کہ اللہ نے جو نازل کیا حق ہے؟ الحمدللہ. تو پھر آپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. قرآن پڑھنے والا بندہ حقیقت میں امر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے حق ہونے کو اور اس کائنات کے برحق ہونے کو پہچان لیتا ہے. اسی لیے فرمایا, جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں, قول و اقرار کو توڑتے نہیں, اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو جوڑتے ہیں, اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں, اور وہ اپنے رب کی رضا مندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں. سب سے مشکل صبر, صبر سے آتا ہے, جلدی نہیں آتا. صبر सब्र से आता है, और ख़ास से फिर वो सब्र जो अल्लाह के लिए किया जाए, अल्लाह के रस्तों में किया जाए, और नमाज़ों को बरकरार कायम रखते हैं, और जो कुछ हमने इनको दे रखा है इसे छुपे खुले खर्च करते हैं, और बुराई को भी भलाई से टालते हैं, इन्हीं के लिए आखरत का घर है, हमेशा रहने के बागात, जहाँ ये खुद भी जाएंगे और इनके बाप दादाओं और बीवी और औलादों में से भी जो नेकुकार होंगे, इनके पास फरिश्ते हर हर दरवाजे से आएंगे, कहेंगे कि तुम पर सलामती हो, सब्र के बदले क्या ही अच्छा बदला है इस दारे आखरत का। और जो अल्लाह के अहद को इसकी मजबूती के बाद तोड़ देते हैं, और जिन चीज़ों को जोड़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया इन्हें तोड़ देते हैं, और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, इनके लिए लानतें हैं और इनके लिए बुरा घर है। अल्लाह ताला जिसकी रोज़ी चाहता है बढ़ाता है और घटाता है। ये तो दुनिया की ज़िंदगी में मस्त हो गए, हालांकि दुनिया आखरत के मुकाबले में नहायत हकीर पूंजी है, यानी आप कह सकते हैं कि डूज एंड डोंट से भरा हुआ रखो। ज़रा सही हिस्से में आयत 20 से 22 में सहाबे कराम के औसाफे हमीदा नोट कीजिए, जिनको यहाँ उलुल अलबाब कहा गया, लुब वाले। आप कहते हैं लुब किसको कहते हैं? भेजे को, मगज़ नहीं भेजा, वो अंदर एक थोड़ा सा हिस्सा जो पका कर खा लिया जाता है ना, बिल्कुल अल्लाह ताला ने यहाँ उन लोगों का तारुफ करवा दिया आपके मुझसे जिनको उलुल अलबाब कहते हैं। और नोट कीजिएगा कि दो किस्म के लोग हैं दुनिया में, एक वो जिनको अल्लाह ने अक्ल दी और उन्होंने उस अक्ल को इस्तेमाल किया, फिर सोचा और हकीकत तक पहुँच गए और बिलआख़िर एक यकीनी फैसले तक पहुँच गए, और वो कह के हम इस दुनिया में आज़ाद नहीं हैं, हम किसी के भेजे हुए हैं। और इसके साथ फिर उन्होंने अपने इरादे अच्छे किए, शऊर की ज़िंदगी बसर की और अल्लाह के लिए अपने आप को खपा दिया। दूसरी किस्म के वो लोग हैं, अक्ल उनके पास भी बहुत है लेकिन अक्ल सलीम नहीं, अय्यार होशियार है। एक लेक्चर है बहुत पहले का दिया हुआ जिसमें तज़किरे नफ्स में हमने बात की थी कि ख्वाहिश से इरादे तक, उसके अंदर एक मिसाल दी थी कि कुछ लोगों की अक़ल बड़ी होशियार होती है, शातिर चलाक एक्स्ट्रा स्मार्ट, एक्स्ट्रा अपने आप को ज़्यादा पेश करते हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी सारी स्किल्स यूज़ तो बहुत अच्छी करते हैं बट गलत चीज़ों में। और इसकी बुनियाद पर आज देखिए दुनिया ने कुफर और फिस्क और फहश को कहाँ तक पहुँचा दिया। तो दूसरी किस्म के वो लोग जो रिवायात और तकलीद के फंदों में फंसे होते हैं, ये अल्लाह को दलाइल की रोशनी में नहीं देखते, ख़ानदानी रिवायात की रोशनी में देखते हैं, वो भेड़ चाल चलते हैं। मक्का वाले कुछ ऐसे ही थे। इसके बरक्स सहाबे कराम वो लोग थे कि जिन्होंने अपनी अक्ल से सोचा, अपने दिल दिमाग से सोचा। आप और मैं बहुत सारी चीज़ों में आज़ाद हैं आज भी। आपको मैं आज एक छोटा सा काम दूँ, पिछला सारा इल्म जो आज तक माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह आपको नसीब करे तबारक अल्लाह, उसको एक साइड पे रखिए। पैदा होकर जिस घर में अब बड़े हुए, जो माँ बाप का माहौल था वो सब, स्कूल, कारी साहब, महाफिज़ा आंटी, अंकपा जी जिन्होंने आपको पढ़ाया, फिर होते होते आपने कितना इल्म लिया, माशरे से लिया, ख़ानदान से लिया, इर्द गिर्द से लिया, एक तरफ डाल दीजिए थोड़ी देर के लिए, जस्ट लीव इट बिहाइंड। और इस कुरान को जिसको आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, इसके ग्लासेस के ज़रिए से अपने ऊपर एक नज़र डालें। आपका दिल अगर हक बात का मुहाफिज़ बन गया ना, तो आपको उलुल अलबाब बनना सिखाएगा, फिर आप वो नहीं करेंगे जो सब करते हैं, फिर आप रिवायत के मुकल्लद नहीं होंगे, आप हक और बातिल को ना सिर्फ ये कि सन ग्लासेस के नाम पे ब्लू ग्रीन ब्राउन कलर के ग्लासेस से देखेंगे, बल्कि आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वो आई साइट जो अल्लाह ने आपको दी है इससे पहचानेंगे, तो आपका दिल गवाही देगा कि ये सारी बातें जो इस वक्त मैं और आप पढ़ रहे हैं इनको अपनाने की कितनी ज़रूरत है। आप देखिए कुछ लोग कुरान भी पढ़ते हैं लेकिन ग्लासेस ब्राउन लगा लेते हैं, आप इमेजिनेशन में लाइए ना, बाहर बड़ी धूप है, सूरज चमक रहा है, और किसी ने ग्रीन कलर के ग्लासेस लगाए हैं, वो कहेगा कोई भी सूरज नहीं है, बाहर तो सब्ज़ा है। तो सारे ग्लासेस को उतारने वाले को उलुल अलबाब कहते हैं। सहाबे कराम की ये जो खूबियाँ हम पढ़ रहे हैं, और ख़ास तौर पर आप इस बारे में क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक, दरख्त की तरह पढ़े थे ना, याद रखिए ज़िंदगी में ग्रो वही करेगा जो अपनी अक्ल अपने दिमाग के साथ चलेगा। हम इधर जा रहे होते हैं, लोग कहते हैं इधर नहीं उधर चलो, उधर चीज़ अच्छी है हम उधर चल पड़ते हैं, उधर नहीं चलो और सारा दिन घूम के आने पर कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा क्या लेना, मैं फिर जाऊंगी। कभी शॉपिंग करने के लिए तीन चार लोग मिलके कभी ना जाएं, कुछ नहीं लेके आएंगे, आप लेने लगेंगे दूसरा की इच्छा नहीं थी, अच्छा फिर और सोच लें, अच्छा तुम क्या कहती, एक एक ही बहुत अच्छा है, तीसरी नहीं छोड़ दो, जहाँ 5-6 लोग मिलकर शॉपिंग के लिए गए वहाँ विंडो वॉचिंग हुई। आप अकेले जाते हैं, सोचते हैं, आप कहते हैं मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या सजेगा, मुझे ज़रूरत क्या है, अच्छा कौन सा रंग मेरे पास है, अच्छा किस किस्म का मटेरियल मेरी तबीयत से मैच करता है, बस चुपके से एक ही लेके आएंगे, चले आएंगे। ये जो हम हिदायत के बाज़ार से जाकर टोकरी में बास्केट और ट्रॉलियाँ भरते हैं ना, एंड पे आधी चीज़ें बेकार होती हैं और घर में स्टोर में पड़ी रहती है। और ये सस्ता मिल रहा था ले लिया, ये बाय वन गेट थ्री फ्री था तो ले लिया, ये 70% ऑफ पे था, गलत करते हैं। देखिए थोड़ा और सुथरा और सीधा साधा, दरख्त ऐसे ही उगता है। सब जड़ी बूटियाँ भी बेकार हो जाती हैं जब एक दरख्त उगने लग जाता है ना, तो सारी एनर्जी दरख्त खींच लेता है, ज़मीन की, मिट्टी की, खाद की, पानी की। आप देखेंगे दरख्तों के नीचे कोई नहीं जड़ी बूटियाँ होती, जड़ी बूटियाँ कहाँ होती हैं, जहाँ झाड़ झंकार है। तो जो बंदा अपने दिमाग से मुआशरे में चल रहा है सब, ये अब इसका रिवाज, अब इनका ऑन है, ये इन है, ये बहुत पॉपुलर है, ये बहुत हिट है, ये ले लूँ वो ले लूँ, तो जो लोग हक की दावत पे चल रहे होते हैं ना, उनमें से जो अक्ल पे चलते हैं वो तो ले लेते हैं, और जो इधर उधर होते हैं वो बिल्कुल बेकार है। फिर आप देखिए कि इस हिस्से में ये सहाबाए कराम की जो खूबियाँ आप अपने सामने देख रहे हैं वो क्या थी। अगर आप सहाबाए कराम को जैसे हैंग मैन की तरह, मैं नहीं कहती कि आप तस्वीर बनाएं, इजाज़त नहीं है तस्वीरें बनाने की ना, फेसिस को आप एक हैंग मैन बनाकर अगर देखें, अहदों को पूरा करने वाले, अल्लाह के अहकाम, अवामिर और नवाही यानी डूज एंड डोंट्स पे अमल करने वाले, कराबतदारों से सिला रहमी करने वाले और अल्लाह का खौफ रखने वाले, खुले छुपे खर्च करने वाले, मोतदिल रवैयों को अपनाने वाले और बुराई को भलाई से दूर करने वाले, क्या ये कोई बड़े अक्लमंद लोग दिखते हैं? लोग कहेंगे स्मार्ट तो नहीं है। स्मार्ट पता कौन है? जो 2 जमा 2, 2 2 नहीं, 2 को 2 करके 4 नहीं बल्कि 22 कहता है। माशरा आपको ईवल जीनियस बनाता है। ईवल जीनियस समझते हैं ना, जीनियस है, अक्लमंद लेकिन बुरे रंग में है। साहबे कराम ने अपनी सारी इंटेलिजेंस, देखिए 4-6 चीज़ों का मजमुआ हूँ मैं भी और आप भी, ऑफकोर्स एक स्किल्स, अक्ल से लेके बोलना सुनना बैठना लिखना करना, दूसरी चीज़ मनी, उसमें माल घर जेवर सोना चांदी ABCDC, तीसरी चीज़ औलाद यानी हमारी फैमिलीज, बच्चे शौहर माँ बाप, और दूसरा और फोर्थ थिंग में मिसेलेनियस लगा लीजिए। हम सब के ये 4 ही चीज़ें हैं, किसी के एक ज़्यादा है दूसरी कम, दूसरी की कम तीसरी ज़्यादा, किसी के पास सब कुछ ज़्यादा, किसी के पास सब कुछ कम। इन 4 चीज़ों का द बेस्ट यूटिलाइजेशन साहबा ने किया। क्यों? आज 2023 है, अगर आप ईसवी कैलेंडर की बजाय अगर हिजरी कैलेंडर देखें तो 1400 प्लस 1450 साल हो गए, कब्रों में एसी भी लगे हुए हैं, हीटर भी लगे हुए हैं, कारपेट भी हैं, और सुबह शाम उनके ऊपर सलामती की दुआएं नहीं हो रही। थोड़ी सी मता देकर बहुत बड़ा फ़ायदा ले लिया। अक्लमंद कौन है? वैसे तो हमें अब इतनी अक्ल कोई नहीं रही, हम तो वो ले लेते हैं जो इन होता है माशरे में, जी ये चल रहा था, जी ऑनलाइन से शॉप की, यानी आजकल शॉपिंग का वो स्टाइल नहीं रहा जो कभी हमारे बचपन से जवानी के दिनों थे। एक जोड़े के लिए माँ के पास कितना रोना पड़ता था, ईद का इंतज़ार करना पड़ता था जोड़े के लिए। आज की अनमेरिड बच्ची के लिए कोई हद है? नहीं है ना, उस मौजू को एक साइड पे कीजिए। लेकिन हकीकत यह है कि आज हमारे लिए हर चीज़ में अबंडेंस है, टू मच टू मच टू मच। पहले कपड़े को पैबंद लगा लेते थे, कहते थे रूठे को मनाओ ना और फटे को सियो ना तो गुजारा नहीं होता। आज की बेटियां कहेंगी लो मैं क्यों फटा पहनूं, ये नहीं बनना ये नहीं बनना, ये आप ले ले ये नहीं करना। शादी के बाद जो दुल्हनों के इतने अच्छे अच्छे जोड़े बनते हैं ना, और वो बेचारी सासों ने जो अरमान निकाले बरी की सूरत में, बहुत कम बच्चियां पहनती हैं। ये नहीं पहनना, ये माँ को दे दिया, ये उसको दे दिया, मुझे नहीं करना। अब आप अपने ऊपर लीजिए इन सारी बातों को, आपको अल्लाह ने पैदा किया, सब कुछ दिया, अपने ऊपर लीजिए। मैं तो कहूँगी जो मुझे दिया किसी को भी नहीं दिया, आई एम द हैप्पीएस्ट वूमेन। आप सब भी अपने आप को यही कहें, और आपको लगता नहीं है कितना सुकून कितना इत्मीनान। तो जब अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया तो आप अपना कुछ भी नहीं अल्लाह को देंगे या सब कुछ देंगे? ये जितने तजुर्बात हैं इसमें आप देखिए कितना कुछ है, रिश्तों से भी जोड़ना कोई आसान है। ये जो सब्र है ना, ये दुनिया में जीना आसान नहीं है। लोग कहते हैं ससुराल में रहना आसान नहीं, शादी के बाद की ज़िंदगी मुश्किल है, कोई कहता है शौहर के साथ सब्र से जिया जाता है, कोई कहता है भाई बीवी को खुश रखना आसान नहीं है। अल्लाह क्या कहते हैं? हाँ, सब्र की वो खूबसूरत किस्म है, आई विश कि मैं आपको सिर्फ यही आयतें पढ़ाती किसी मौके पे, बस इतनी ब्यूटीफुल पैकेज। लेकिन वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वज्हि रब्बिहिम, सब्र वो नहीं है सबको सुना रहे हो, रो रहे हो, दो रहे हो, हाय क्या बताऊं ये वो। सब्र ये है मुसलसल सब्र, नफ्स के मुहरक़ात पे सब्र, मुफादात के ज़ाया होने के मुकाबले में सब्र, माहौल के दबाव में सब्र। तीन बातें मैं बोल दूं फिर, कौन सा सब्र? ये सारा कुछ जो अल्लाह आपसे कह रहा है कि अल्लाह के लिए सब्र क्या है, आपका नफ्स आपको टेम्प्ट करता है। वमा बरी नफ्सी में पढ़ लिया आपने, अब आप अपने नफ्स के अंदर जो उठने वाली बातिल चीज़ें हैं ना, कभी आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है आप कहते नहीं ली बची रबी सब्र करना है, कहीं को आपका दिल दुखाता है, कहीं आपका दिल गलत चीज़ पे आ रहा है, सब्र। नफ्स को दबाइए, जैसे आटा गूंदते हैं ना ऐसे नफ्स को रोज़ गूंदा करें खूब अच्छी तरह, अनलेस के ये बिल्कुल नरम ना हो जाए, फिर आपके फ़ायदे हैं, कहीं आप अल्लाह की बात मानेंगे फ़ायदे तो जाएंगे। देखिए ना, एक हराम कमाई छोड़ने वाले का कुछ जारी फ़ायदा तो जा रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि जो मैंने गलत छोड़ना है उसके मुकाबले में अल्लाह ने उससे कई गुना मुझे अच्छा दे देना है ना। तो सब्र हुआ ना, माहौल का दबाव है, आप कहते हैं मैं इधर चल रही हूँ, माहौल कहते तुम किधर चली हो। याद रखिए एक मोमिन जन्नत की खातिर इन तमाम चीज़ों पर सब्र करता ही जाता है, और सब्र है जन्नत की कीमत, और ये कीमत अदा किए बगैर वहमों की जन्नत मिल सकती है, ख्वाहिशों की जन्नत मिल सकती है, अल्लाह की वो अबदी जन्नत किसी को नहीं मिल सकती जिसका वादा उसने इनायात में भी आपसे किया। और आप देख रहे हैं कि इनायात में बार बार अहद की बात है, अहदे फितरत में एक इंसान बंधा हुआ है अल्लाह से, और दूसरा अहद है इंसानों से। हमारे साथ अल्लाह ने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करवाया था कि अपने पेरेंट्स की बात मानोगे, माँ बाप को कभी बच्चा पैदा होने से पहले कोई MOU साइन नहीं करना पड़ता कि जो बच्चा आएगा हम उसको देखेंगे, लेकिन कुछ फितरत के गुंधे हुए अहद हैं। शौहर बीवी का अहद एक कॉन्ट्रैक्ट है, निकाहनामा एक लीगल एक्ट है ना। बिजनेस करते हैं आपके हस्बैंड कई जगह अपने फैक्ट्स करते होंगे, जॉब एक एक्ट है। आपकी मेरी ज़िंदगी क्या है कि आपने हर जगह वैसा बनना है जैसा अल्लाह आपको चाहता है, फिर देखिए आपको क्या मिलता है। और आज उम्मत मुस्लिम सिर्फ इन चंद आयतों पर पूरी उतर जाए, सारी दुनिया में लोग इनको कॉल करें कि आओ और हमें ये दीन सिखाओ। आप और मैं आज लफ्ज़ों से ज़्यादा नहीं सिखा सके, अल्लाह करे कि हम सहाबा की तरह अमल से सिखाने वाले बन जाएं, और इन सारी बातों को सुनते वक्त अब अपने लिए नोट करेंगे हम कुछ चीज़ें कि जो दिल की गहराई से अल्लाह से दुआ करते हुए हमने अपनानी है। नंबर एक, पुख्ता अहद को नहीं तोड़ना, डोंट ब्रेक द प्रोमिसेस। फिर अल्लाह के अहद को नहीं तोड़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह का अहद करके अपनी ज़िंदगी को दूसरी चीज़ों से बेनियाज कर लीजिए। फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ताल्लुकात को जोड़िए, अपनी फैमिली का कोई एक बंदा ऐसा सोचिए जो आपको अच्छा नहीं लगता, शायद हो, आज जाकर उसको कॉल करें, गिफ्ट भेजें, खाना भेजें, अगर शहर में रहते इफ्तारी भेजें, उसको बुला लें ईद की दावत में, उसको बुला लें चांद रात में, उसको किसी भी तरह बुला लें और कहना है अल्लाह ये तेरी रज़ा का सब्र है, फिर देखिए क्या होता है। इतना अल्लाह आपको नवाजेगा कि आप उसको समेट नहीं सकेंगे। फिर सबसे बड़ी बात, भलाई से बुराई को दफ़ा करना है। सोचिए ज़रा, किसी ने आपसे बुरा किया? कभी ना कभी तो किया ही होगा ना, धोखा दिया होगा, कुछ 420 की होगी, आज आप उसके साथ जाके भलाई करें। अल्लाह अकबर, फिर पोशीदा और एलानिया खर्च करें, 10 रुपये आज छुपा के खर्च कर दें और 10 रुपये दिखा के खर्च कर दें, अमल हो जाएगा। हमारी एक टीचर थी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बहुत नाइस, वो कहा करती थी कि जितना भी कुरान पढ़ो ना उस पर फ़ौरन अमल किया करो, और उस पर वो मिसाल देती थी सदक़े की आयत आई ना तो 50 पैसे डाल दो कहीं भी, ना ज़्यादा डालो, जो है इससे तुम्हें अमल की आदत पड़ेगी। फिर उसके बाद बुरे हिसाब का खौफ रखना है, और अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक दे। आगे है रुकू नंबर 10, 27 से 31, टॉपिक है दावत हक किसी मोजज़े की मोहताज नहीं है, यानी हक को इतना एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत कोई नहीं होती, हक तो खुद अपनी एडवर्टाइजमेंट खुद होता है, वर्ड बाय माउथ होता है, जिसने एक दफ़ा सुन लिया वो आ जाता है, जिसने एक दफ़ा बता दिया वो आएगा। तो यहाँ यही बात है कि लोग तो नारे लगा लगा के स्लोगन दे दे के बुलाएं, और हक को सिर्फ सीधी साफ सुथरी आवाज़ में क्या कहना पड़ता है, आइए देखते हैं। वयकूलुल्लज़ीना कफरू, काफिर कहते हैं कि इस पर कोई निशानी या मौजज़ा क्यों नाजिल ना किया गया? जवाब दीजिए कि अल्लाह ही जिसे गुमराह करना चाहे उसको कर देता है, और जो इसकी तरफ झुके उसे रास्ता दिखा देता है। दुआ करें अल्लाह भी झुका दे, फिर हमें रास्ते भी दिखा दे। जो लोग ईमान लाए इनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो कि अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम भी किए, इनके लिए खुशहाली है और बेहतरीन ठिकाना है। इसी तरह हमने आपको इस उम्मत में भेजा जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं। क्या आप इन्हें हमारी तरफ से जो वही उतरी है पढ़कर सुनाइए? ये अल्लाह रहमान के मुनकिर हैं। आप कह दीजिए कि मेरा पालने वाला तो वही है, इसके सिवा दर हकीकत कोई भी लायक इबादत नहीं। इसी के ऊपर मेरा भरोसा है और इसी की जानेब मेरा रुजू है। अगर बिलफर्ज़ कुरान यानी किसी भी आसमानी किताब के ज़रिए पहाड़ चला दिए जाते या ज़मीन टुकड़े टुकड़े कर दी जाती या मुर्दों से बातें करा दी जाती, फिर भी वो ईमान न लाते। कुछ लोगों को प्यार से बुलाएं, नहीं मानते। गुस्से से बुलाएं, नहीं मानते। डरावा दें, नहीं मानते। धमकियां दें, नहीं मानते। अल्लाह कहता है आप उनको छोड़ दीजिए। बहुत हैं अभी दुनिया में जो इस दावत के मंतजर हैं। तो यहाँ उनके नखरे जो थे ना, अल्लाह कहता है ज़्यादा नखरे देखना छोड़ दो। वजह बात यह है कि सब काम अल्लाह के हाथ में है। क्या ईमान वालों को इस बात पर दिल जमा ही नहीं? यानी कि आपका दिल इस पर नहीं जमा हुआ, ठोका हुआ नहीं क्या कि अगर अल्लाह चाहे तो तमाम लोगों को हिदायत दे दे? कुफार को तो इनके कुफर के बदले हमेशा ही कुछ सख्त सजा पहुंचती रहेगी, या इनके मकानों के करीब नाजिल होती रहेगी, यहाँ तक कि वादा इलाहिया पहुंचे। यकीनन अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। जब बंदा खुद हिदायत पे आता है ना, तो उसका दिल करता है कि सब हिदायत पे आ जाए। ये कैसी तड़प है! सबसे पहले बंदे को अपनी फिक्र लगती है, खू अनफुसा को। फिर आप कुरान की महफिल में आके बैठते हैं, फिर आप कहते हैं हाय ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी ख़राब, ये भी ख़राब। चलें भाई मैं अपनी इसलाह करूँगी। ठीक, अब आप अपनी इसलाह में आ गए, अब आप बेहतर हो गए। इमेजिनेशन में लाइए, मैं एक मिसाल देती हूँ। औरतों को ऐसी मिसालें बड़ा फ़ायदा देती हैं। आप अपना चेहरा आईने में देखती हैं, पिम्पल्स भी हैं, कुछ अनवांटेड हेयर्स भी हैं, स्किन पे कुछ टेनिंग भी है, झुर्रियाँ भी पड़ी हैं। अब आप कहते हैं ये क्या हो गया, मेरे चेहरे पे इतने दाग और धब्बे हैं। चलो जी किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, पूछो भाई, गूगल करो, पता चलो जी कौन है शहर में सबसे अच्छी डर्माटोलॉजिस्ट। पहुँच गए उधर, अब आपने एक एक करके अपने रोग उसके सामने रखे। उसने कहा नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये देखिए अभी करते हैं आपके इलाज। वो आपका लेज़र करती हैं, कुछ बाल नहीं होते तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस से निकालती हैं, वो आपका कर देते हैं फेशियल, हाइड्रा फेशियल करा दें, अच्छा ये भी कर लें। 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन में दोस्तें कहती हैं आपको क्या हुआ, करती क्या हो? अब आप कहते इसको तो नहीं बताना, बस दुनिया में मैं ही सबसे खूबसूरत रहूँ। अब आप नहीं, कुदरती हुसन है, मेकअप तो मैं करती नहीं, ये तो मेरे ऊपर बस अल्लाह का नूर बरस रहा है। अच्छा वो कहती मैं भी पता करूंगी। कुछ ही सब चेहरे पे लगा लेते हैं, शाइनी शाइनी। लोग कहते क्या लगाया हुआ, कहते कुछ भी नहीं, मैं अंदर से सच्ची पड़ी हूँ ना तो वो रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा लेकिन चुपके चुपके आप क्या सोचती हैं कि मेरा चेहरा तो बड़ा प्यारा हो गया। तो बेटी अब वो ज़रा सी 18-19 साल की है, रिश्ता भी हम ढूंढ ही रहे हैं, आपको अपनी बेटी में भी कोई ना कोई नक्स दिखता है। चुपके से उसको ले जाएंगे और उसको कहेंगे आंटी को नहीं बताना, वो जो मेरी दोस्त थी ना, वो जो उसने कुरे, उसको नहीं बताना हम इधर आते हैं। लेकिन आपके दिल में सबसे ज़्यादा तड़प अपने बाद अपनी औलाद की होती है, पक्की बात है। जो मैं सजी वो भी सजे, जो मुझे अच्छा लगा उसको अच्छा लगे, हत्ता के पेट में लुकमा नहीं आप डालते अपने किसी प्यारे के सिवा। जो आपको अच्छा लगता है ना, आप उसके ऊपर एक लुकमा नहीं खा सकते, और जो उसको अच्छा भी लगता हो। हिदायत ऐसी है, इन आयात से जो आपको बात बताई जा रही है ना, जब आपको खुद हिदायत मिल गई तो दूसरों की हिदायत की तड़प लाजमी है, और जो जितना प्यारा है उसके लिए उतनी तड़प। और एक जुमला लिख लें, इस साल भी चले जाने दीजिए जेम्स में, कि दूसरों की हिदायत की फिक्र ना होना इस बात की दलील है कि अभी अपनी हिदायत भी पूरी नहीं है। फिर आप ये नहीं कहते कितनों को फ़ायदा हो रहा है, फिर आप ये देखते हैं किन को ज़रूरत है और उनको फ़ायदा नहीं हो रहा और वो ले नहीं रहे। बच्चे को दूध की तलब है, डॉक्टर कहते हैं इसको दूध दीजिए वरना इसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, और बच्चा है कि जब से उसने फीडर छोड़ दिया दूध ही नहीं पी रहा। अब माँ क्या करती है, दूध में चॉकलेट, बेटा चॉकलेट मिल रहा पियोगे, अच्छा इसको आइसक्रीम दिला दो कुछ दूध तो इसके अंदर जाए। डिजर्ट खिला, चलो चॉकलेट में भी कुछ दूध ही होता है, जाओ इसको चॉकलेट्स दिलाओ, बहाने बहाने छुपा छुपा के आप कहीं खानों में दूध डालेंगे, आप उसको दूध पिला देंगे, बस ये कीजिए। आपके प्यारों को हिदायत नहीं अच्छी लग रही, फीकी है ना, थोड़ी सी चीनी डाल दें, उनकी मनपसंद चीज़ डाल दें। वो एक माँ थी ना, तो बच्चे को दवा खिला रही थी, तो बच्चा दवा खा नहीं रहा। अब जो बच्चा दवाई नहीं खाता, तो माँ ने सोचा इसको लड्डू बड़ा पसंद है, उसने वो गोली लड्डू के अंदर घुसा के उसको दोबारा घुमा के कहा बेटा लड्डू खा लो। बेटे ने एक नहीं दो तीन लड्डू खा लिए। बाद में अम्मा ने पूछा कि लड्डू खा लिए आपने? कहता जी अम्मा लड्डू तो सारे खा लिए, वो उसके अंदर एक गुठली थी वो निकाल के फेंक दी। शुरू में ऐसे ही करेंगे आपके प्यारे, बिलीव मी, रो पड़े अपने बच्चों के सामने, शौहर के हाथ पकड़ के ना, तो जितना एक्शन दिखा के जो फिल्मों में कभी देखा हुआ ना, मेरे सरताज और मेरे फुलां कहकर एक दफ़ा रो पड़े, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता, मैं आपको अपने साथ जन्नत में लेके जाना चाहती हूँ, मैं नहीं जाऊँगी आपके बगैर, और आपकी ये आदत आपको जन्नत में जाने से रोकेगी। फतवे ना दें मोहब्बत और प्यार की बात, कभी कॉफ़ी का कप लेके दोनों चले जाएं किधर, प्यारों को रो के, कभी हंस के, कभी मना के, कभी लाड करके, अदाएं दिखा के एक बार ये चखा दें। पहली चमची मेरे कहने पे ले लो, ना अच्छा लगा तो अगली छोड़ देना, अपनी हर दोस्त को ये जुमला बोले, एक दफ़ा मेरे कहने पे, बाकी उसके बाद आपके दिल के कहने पे, फिर देखिए क्या होता है। साहबे कराम ने हिदायत का ये सफ़र तनहा तय नहीं किया था। देखिए दरख्त अकेला भी अच्छा लगता है, लेकिन जो दरख्तों की कतार आप सड़क के किनारे देखती हैं, या कभी आपने मंजर देखा हो, पहाड़ों की आज बातें हो रही हैं, पहाड़ की चोटी के ऊपर दरख्त होते हैं, नॉर्वे में अगर आप देखें ना, तो हम सड़कों पर जाते हैं, तुम्हारे इर्द गिर्द काफ़ी पहाड़ है, पथेली है वो, और इसी तरह यही मंजर आपको बहुत सारी जगहों और पर भी दिखता है, कोई वहाँ ख़ास बात नहीं, हर जगह हो सकता है, लेकिन आप फील करेंगे कि एक कतार में लगे हुए दरख्त बड़े खूबसूरत लगते हैं, चौकीदार लगते हैं, आर्मी लगती है, फौज लगती है, यूं एकदम अकेला बंदा ग्रो नहीं करता। हमने एक तजुर्बा किया था कुछ साल पहले, ह्यूस्टन में थे तो एक सुनामी आई थी, यानी तूफान आता है हर साल, वहाँ भी आया था। तो किस्सा मुख्तसर, अगले दिन सुबह क्या हुआ कि जब तूफान थम गया, चीज़ें सही हो गई, तो निकले के देखे बाहर क्या, इंतहाई अजीब बात जो देखी, बड़े बड़े दरख्त जो अकेले अकेले थे ना, वो गिरे हुए थे, पूरी रोड्स ब्लॉक हो गई, बहुत कुछ हुआ था आज से काफ़ी साल पहले की कहानी है, लेकिन जो छोटे छोटे ऐसे ऐसे दरख्त नहीं होते, दरख्त या पौधे कह लें, उसमें 98% बिल्कुल ठीक थे। पता क्या हुआ, ऐसे हवा चलती है ना यूँ, तो सारे एक दूसरे की सपोर्ट पे यूँ हो जाते थे, और फिर हवा इधर तो यूँ, हुला रहे तो आए लेकिन वो गिरे नहीं। तब मैंने उस दिन दिल में नियत की थी, अकेले दरख्त बनने से बहुत बेहतर है अपने साथ टीम बनाकर चलो, वन मैन शो नथिंग। साहबे कराम दरख्त की तरह उगे थे, इसीलिए अल्लाह ने उनको बहार भी दी थी। और अकेले दरख्त नहीं बनना, झाड़ फूक नहीं बनना, एक सड़क के किनारे लगा हुआ दरख्त है, आने वाले जाने वालों के कपड़े फाड़ेगा, और एक बाग में खूबसूरती भी है और शांत भी है। अल्लाह से कहे कि अल्लाह मुझे तनहा ना छोड़ना, वजली वजीर मिन अहली, आगे हम पढ़ेंगे सोलहवें पारे में। तो ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, इधर आपने और मैंने रब को अगर पहचानना है ना, शक्ल से नहीं, आंख से नहीं, खुली आंखों से कोई रब को नहीं देख सकता, मुशाहदे की सतह पे नहीं देख सकते, हाँ एक ही याद है और वो क्या है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। आपने नोट किया कि मशहूर तरीन आयत जो हमें से अक्सर लोगों को ज़बानी याद है, वो इस हिस्से में है, आयत 28 का लास्ट देखिए, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, खूब जान लो कि दिलों को अल्लाह की याद से सुकून मिलता है। याद क्या है, ये जिक्र नहीं है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, याद रखिए ये औराद है, ये जिक्र बिल लिसान है, असल जिक्र दिल में, जिक्र बिल कल्ब, फिर बिल लिसान, फिर बिल जवारे, आपको अल्लाह याद रहे। जब हम कहते हैं ना, आप किसी को देखे, आप कहते हैं अरे मैं आपको भी याद कर रही थी, अब ये तो नहीं कहते कि आपका तस्करा हो रहा था, ये जो था ना तस्करा होता है। अब एक जुमला लिखिए, कोई तो याद आता है और कोई याद रहता है, कौन सा बेहतर है? लोग कहते हैं मुझे याद किया था, वो कहते हैं आपको भूला ही नहीं, अल्लाह को भूलना नहीं है, ये नहीं कि रमज़ान में अल्लाह याद आया होगा और ईद के दिन भूल गया, फिर शवाल के 6 रोज़ों में याद आ जाएगा, फिर बाकी 24 दिन भूल गया, नहीं, आपके दिल की धड़कनों में रब की याद हो। लिखिए वो काम जो लोग तस्बीह के दानों से लेते हैं, मोमिन अपने दिल की धड़कनों से लेता है और फिर उसको अल्लाह ताला की हर बात याद रहती है। वो अल्लाह को राज़ी करता है, वो उस चीज़ पे राज़ी होता है जिस पे अल्लाह राज़ी हो, वो उस चीज़ को छोड़ देता है जिससे अल्लाह नाराज़ हो। वो अल्लाह के हर काम के ऊपर अपने दिल को ऐसे जमा लेता है कि जिसके बाद उसको क़यामत के दिन जब अल्लाह को मिलेगा तो कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी। मोमिन का जो रिज़ल्ट होगा ना आखिरत में, वेरी मच प्रिडिक्टेबल। उसने अपने आप को रॉन्ग एस्टिमेट नहीं किया कि मैं तो फर्स्ट आ जाऊंगी और बाद में पता चला कि ज़बरदस्ती पास किया तुम्हें किसी ने ग्रेस मार्क्स देके। आप और मैं इस दुनिया में इम्तिहान में, इसलिए आज और आपको मुझे लोगों के रवैयों से बेनियाज होके अल्लाह पे नज़रें लगा के रहना है। और इसके अलावा जिसको नहीं मानना तो मुर्दे भी बात करके आके कह दे लोगों कब्र बरहक है, अजाब बरहक है, मौत बड़ी सख्त है, मैंने देख लिया जन्नत है जानो मैं, ये होगा। नहीं मानने वालों ने नहीं माना। अपने ऊपर दुआ करते हुए लिखिए अपने लिए अमल के रवैये, अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान देना है। देखिए खाना खा लेते हैं ना तो मैदा फिर सुकून में आ जाता है। ये अलग बात है कि हम उंगलियाँ डाल डाल कर देख रहे होते हैं कि जगह कितनी रह गई, ये भी थोड़ी सी जगह है, लाइए एक पकौड़ा और दे दें। अच्छा ये भी नीचे चला गया है, लो वो रोल बचा हुआ, लो मैं खा लेती हूँ, पड़ा ही रहना है। हम सोने तक यहाँ तक क्लॉक करके सोते हैं, फिर कहते सहरी में कुछ खाया ही नहीं जाता। अच्छा तरावी के बाद जाके खाना खाते हैं हम, तो फिर सो जाते हैं। ज़रा सोचिए ना अल्लाह ने क्या निज़ाम दिया, हम क्या करते हैं। जब आप इतना ज़्यादा अपना पेट भर लेंगे ना तो सांस की भी जगह नहीं रहेगी। हम एक जुमला अक्सर बच्चों को कहते हैं, पेट भर के खाना, कितनी माएँ बोलती हैं सहरी के वक्त, क्या ये इस्लामी जुमला है? अल्लाह के नबी ने क्या कहा, पेट के नंबर एक समोसा पकोड़ा दही बल्ले जलेबी, कचौरियाँ तो भूल ही गई, नहीं क्या करो, खाना पानी हवा, यानी खाली, लीव इट एम्प्टी। जब आप अल्लाह की याद अपने दिल में भरते हैं ना, खुद ब खुद आपको सारी बातें समझ आ जाती हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि नेक अमाल करके अल्लाह पे भरोसा भी करना है, लोगों को बताना है कि अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उश्रिक बी शैया। अब मैंने लोगों से डरना छोड़ दिया, मैंने अब लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ दी और लोगों को वही का पैगाम पढ़कर सुनाना है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे।